डॉक्टर क्रेग कीनर मैथ्यू व्याख्यान दो विश्वसनीयता भाग दो और चमत्कार भाग एक 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र संख्या दो विश्वसनीयता भाग दो और चमत्कार भाग एक है। पिछले भाग में हमने गॉस्पेल की विश्वसनीयता के बारे में बात की। हम उनसे यीशु के बारे में ऐतिहासिक रूप से कैसे सीख सकते हैं और साथ ही गॉस्पेल लेखक चाहते थे कि हम यीशु के संदेश को सीखें और यीशु कैसे रहते थे इस संदेश को सीखें। और यह कि यह उस चीज के अनुरूप है जो आप प्राचीन जीवनीकारों से अपेक्षा करते हैं। अब इस बिंदु पर मैं स्वयं सुसमाचार में कुछ और विशिष्ट विवरणों पर जा रहा हूँ। कुछ विशिष्ट प्रारंभिक लक्षण हैं जो सुसमाचार में रहते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य चीजें जल्दी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी चीज का दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो आप अक्सर उस भाषा के मुहावरों अलंकारों का उपयोग करेंगे जिसमें आप अनुवाद कर रहे हैं और आप संस्कृति से संबंधित चित्रों का उपयोग करेंगे। तो गॉस्पेल के मामले में आप जानते हैं गॉस्पेल ग्रीक में लिखे गए हैं। यीशु शायद कभी कभी ग्रीक भाषा बोलते थे। वह शायद द्विभाषी था लेकिन शायद आमतौर पर गलील में अरामी भाषा बोलता था। अब यदि ऐसा मामला है तो गॉस्पेल में बहुत सारी सामग्री है जिसका अनुवाद किया गया था और हम उम्मीद करेंगे अगर इसका अनुवाद वास्तव में अच्छी तरह से किया गया है तो हम उम्मीद करेंगे कि इसमें ग्रीक भाषा के अलंकारों का उपयोग किया जाएगा इत्यादि। लेकिन अक्सर गॉस्पेल वास्तव में भाषण के पहले के आंकड़ों को संरक्षित करते हैं। वे विशेष रूप से बोलने के यहूदी और गैलीलियन तरीकों और छवियों आदि को संरक्षित करते हैं। तो गॉस्पेल में इन विशिष्ट रूप से पहले के लक्षणों के बीच ग्रीक में संक्रमण संभवतः सबसे पहले यरूशलम चर्च में हुआ था जहां एक आम भाषा ग्रीक रही होगी क्योंकि आपके पास यरूशलम में बहुत सारे ग्रीक बोलने वाले थे और अधिकांश गैलीलीवासी कम से कम निचली गलील में कम से कम कुछ हद तक द्विभाषी थे। वे कुछ ग्रीक बोल सकते थे लेकिन कई विदेशी यहूदी जो भूमध्य सागर के अन्य हिस्सों से आकर बस गए थे वे केवल ग्रीक बोलते थे या कम से कम कोई अरामी भाषा नहीं बोलते थे। इसलिए अनुवाद शायद जल्दी हो गया। और आप में से जो एक से अधिक भाषाएं जानते हैं वे समझते हैं कि यह कार्य काफी सटीकता से किया जा सकता है। मेरी पत्नी फिर से कांगो से है और वह फोन पर आएगी और वह हमारे परिवार के सदस्यों से बात करेगी और वह मुनुकेतुबा या कित्संगी में एक व्यक्ति से बात करेगी और फिर वह बात करेगी फ्रेंच में किसी और के साथ। मैं उससे कुछ कहूंगा। वह मुझे अंग्रेजी में जवाब देगी। वह कुछ लिंगाला भी कर सकती है। मेरा मतलब है उसके पास पांच भाषाएं हैं जिनमें वह काम करती है और वह बहुत सटीकता से एक से दूसरी भाषा में स्विच कर सकती है। मैं आपको अमेरिका में लोगों के बारे में चुटकुले नहीं सुनाऊंगा, कम से कम अमेरिका में एंग्लो के बारे में जो केवल एक भाषा बोलते हैं। लेकिन वैसे भी अक्सर हमारे पास अरामी लय होती है जब यीशु की बातों का अरामी भाषा में अनुवाद किया जाता है। अब किसी चीज का दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत काल्पनिक है। इसे करने के एक से अधिक तरीके हैं लेकिन कम से कम अक्सर ये कहावतें एक विशेष लय को प्रतिबिंबित करती हैं जैसे कि उन्हें आसानी से याद रखने योग्य रूप में दिया गया था जैसे कि कई अन्य यहूदी शिक्षाएं थीं। हमारे पास यहूदी या गैलीलियन अलंकारों सूक्तियों या विचारों के उदाहरण हैं जैसे वाक्यांश आपने इसे कहते हुए सुना है या जब यीशु कहते हैं कि वासना अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से व्यभिचार का गठन करती है। दूसरी शताब्दी में रब्बी इश्माएल के स्कूल ने ऐसा कहा था। यूनानियों ने ऐसा कभी नहीं कहा होगा। इसे किसी के लिए वैसे ही मापा जाएगा जैसे किसी ने इसे दूसरों के लिए मापा था। मैथ्यू 7:02 और ल्यूक 6:38, जिसे वे क्यों सामग्री कहते हैं। किसी अन्य की आंख से चिप निकालने का प्रयास करने से पहले किसी की आंख से किरण निकालना। फिर से मैथ्यू और ल्यूक के बीच इस साझा सामग्री में वाक्यांश मैं किससे तुलना करूं? यह दृष्टांत प्रस्तुत करने का एक सामान्य तरीका था और यीशु भी ऐसा ही करते हैं। अमुक-अमुक दृष्टांत प्रस्तुत करने का एक सामान्य तरीका है। पहले के कुछ नए नियम के विद्वान कहते थे, ठीक है, यीशु के दृष्टांतों की व्याख्या बाद में होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में प्राचीन काल में अधिकांश यहूदी दृष्टांतों की उनके साथ व्याख्याएं थीं, और इसलिए यीशु की व्याख्याएं उस अभ्यास के अनुरूप हैं। प्रभु की प्रार्थना का पहला भाग यहूदी प्रार्थना के समान है, जिसका उपयोग उनके समय में यहूदिया और गलील में किया जाता था। वह इस प्रकार हुआ, तेरा महान और महिमामय नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य शीघ्र और शीघ्र आए। फरीसियों के तलाक का प्रश्न बिल्कुल यीशु की पीढ़ी के फरीसी स्कूलों के बीच एक बहस को दर्शाता है। फरीसियों के साथ भी ऐसा ही है, इस बात पर बहस करते हैं कि आप पहले कप के अंदर की सफाई करते हैं या कप के बाहर की। मनुष्य का पुत्र वस्तुतः मनुष्य का पुत्र। खैर, यह अच्छा अरामी और अच्छा हिब्रू है, बार्निश बेन एडम, लेकिन ग्रीक में इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जैसे अंग्रेजी में इसका कोई मतलब नहीं है, द सन ऑफ द मैन। इसलिए यह यीशु के बोलने के अपने तरीके को सुरक्षित रखता है। पहाड़ों को हिलाना एक यहूदी रूपक था जो लगभग असंभव को पूरा करने के लिए था। यहूदी शिक्षकों ने आपस में बहस की कि कौन सी आज्ञा सबसे बड़ी है, और यही उन्होंने यीशु से पूछा। वाहवता आपको पसंद आएगा के आधार पर जोड़ा है। यह सामान्य कीवर्ड के आधार पर ग्रंथों को एक साथ जोड़ने की एक सामान्य यहूदी व्याख्यात्मक तकनीक थी। बेबीलोन के यहूदी शिक्षकों ने एक ऐसी चीज के बारे में बात की जो लगभग असंभव थी, जैसे कि एक हाथी का सुई की आंख से गुजरना। खैर, यहूदिया में सबसे बड़ा जानवर हाथी नहीं था, वह ऊंट था, और यीशु एक ऊंट के सुई के छेद से गुजरने की बात करते हैं। तो हमारे पास इनमें से कई हैं। ये केवल उदाहरण हैं, लेकिन हमारे पास मैथ्यू के सुसमाचार और संपूर्ण सुसमाचारों में इनमें से कई हैं जो यीशु के स्वयं के वातावरण को दर्शाते हैं, न कि बाद के चर्च के वातावरण को। यह ऐसा माहौल था जिसे सबसे पहले गैलीलियन शिष्यों ने साझा किया था, लेकिन फिर वे ही लोग हैं जिन्होंने उनकी स्मृति को सबसे सटीक रूप से संरक्षित किया होगा। इसके अलावा चश्मदीद गवाह भी चर्च में प्रमुख रहे। चर्च के नेता और वस्तुतः सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि पॉल ने गलाटियन और एक कुरिन्थियन लिखा। यदि आपने एक कुरिन्थियों को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि कोई भी एक कुरिन्थियों को नहीं बना पाएगा। मेरा मतलब है, यह स्थानीय कोरिंथियन स्थिति को संबोधित है। लेकिन गलातियों 2:1 के अनुसार चर्च के नेता यीशु के भाई जैसे लोग थे, यीशु के सबसे करीबी शिष्य जो पीतर और जॉन थे। ये वे लोग थे जो चर्च का नेतृत्व कर रहे थे। वे चर्च में सबसे बड़े अधिकार वाले, चर्च में सबसे बड़े प्रभाव वाले लोग थे, और वे यीशु के चश्मदीद गवाह और चेले थे। कुल मिलाकर यीशु की सेवकाई, उसकी सत्यनिष्ठा और उसके पुनरुत्थान के संबंध में झूठे दावे के लिए कौन मरेगा कि वे जानते थे कि झूठ था। लोग हर समय झूठे विचारों के लिए मरते हैं, लेकिन उस विचार के लिए कौन मरेगा जिसके बारे में वे जानते थे कि वह झूठ है। शिष्यों ने स्पष्ट रूप से यीशु पर विश्वास किया। वे स्पष्ट रूप से मानते थे कि यीशु मृतकों में से जी उठे थे, और वे गवाह थे, और इसलिए हम इस मामले में उनकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा कर सकते हैं। गॉस्पेल पुनरुत्थान के लिए महिलाओं की गवाही का हवाला देते हैं। यहूदी हलकों और गैर यहूदी हलकों दोनों में महिलाओं की गवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बावजूद वास्तव में यह रोमन कानून के साथ साथ यहूदी कानून में भी निहित था कि महिलाओं की गवाही पुरुषों की गवाही से कम मूल्यवान थी। सुसमाचार लेखकों ने इसे उस प्रकार की संस्कृति में नहीं बनाया होगा। हम ल्यूक 1:1 के बारे में बात कर रहे हैं। ल्यूक के पास उपलब्ध लिखित स्रोतों के बारे में श्लोक 2 में प्रत्यक्षदर्शियों से ल्यूक के लिए उपलब्ध मौखिक स्रोतों के बारे में, लेकिन श्लोक 3 में हमें पता चलता है कि ल्यूक इन चीजों की जांच या अन्वेषण करने में सक्षम था। ल्यूक इन बातों की पुष्टि करने में सक्षम था। जानकारी देखें श्लोक 3 इसलिए चूंकि मैंने स्वयं शुरू से ही हर चीज की सावधानी पूर्वक जांच की है। खैर, वह हेलेनिस्टिक आदर्श था, पूर्वी भूमध्य सागरीय आदर्श जो वहां प्रचलित था जहां ल्यूक लिख रहा था। चीजों की जांच करना, भूगोल की जांच करना और प्रत्यक्षदर्शियों से परामर्श करना था। आपको इसका सावधानी पूर्वक अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे संपूर्ण ज्ञान का अनुवाद भी कर सकते हैं। लेकिन ल्यूक को यह संपूर्ण ज्ञान कहां से मिला होगा? और फिर हेलेनिस्टिक आदर्श के अनुसार उन्होंने चश्मदीदों से सलाह ली होगी। खैर, उसकी चश्मदीद गवाहों तक पहुंच कहां होगी, क्योंकि ल्यूक संभवतः एजियन क्षेत्र से था जो उत्तर की ओर है। यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक ल्यूक के दूसरे खंड को देखें तो यह हम के बारे में बात करता है। प्रेरितों के काम 16:10 से शुरू होकर हम थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, उठाता है और फिर अंत तक चलता रहता है। किताब। खैर, सामान्यतः हमारा क्या मतलब है? आम तौर पर इसका मतलब है मैं और कम से कम कोई और। खैर, विद्वानों, हम कभी जटिल चीजों को सरल बनाकर और कभी कभी सरल चीजों को जटिल बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह उन स्थानों में से एक है जहां विद्वानों ने कभी कभी एक साधारण चीज को जटिल बना दिया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि हम एक काल्पनिक साहित्यिक उपकरण हैं। समस्या यह है कि वह उपकरण वास्तव में प्राचीन दुनिया में कहीं भी प्रमाणित नहीं है। जब हमारे आपके पास यह किसी उपन्यास में है तो जाहिर तौर पर यह काल्पनिक है। आम तौर पर इसका मतलब है मैं और कम से कम कोई और। खैर, विद्वानों, हम कभी जटिल चीजों को सरल बनाकर और कभी कभी सरल चीजों को जटिल बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह उन स्थानों में से एक है जहां विद्वानों ने कभी कभी एक साधारण चीज को जटिल बना दिया है। लेकिन जब यह आपके पास इतिहास के किसी कार्य में होता है जिसके बारे में अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत होते हैं कि यह अधिनियमों की पुस्तक है और मैंने अधिनियमों पर 4 खंडों में एक टिप्पणी लिखी है, जब आपके पास यह इतिहास के किसी कार्य में है तो हम लेखक के रूप में ऐतिहासिक रूप से माने जाते हैं। आम तौर पर इसमें किसी और को भी शामिल किया जाता है। खैर, कुछ लोग कहते हैं कि शायद यह किसी यात्रा पत्रिका से बचा हुआ है और यह करीबी विवरण बताता है। खैर, यह किसी यात्रा पत्रिका से बचा हुआ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ल्यूक, जैसा कि वह ल्यूक के सुसमाचार के अध्याय 1 में कहता है, उसके पास कई स्रोत उपलब्ध थे। वह कहीं भी हमको शामिल नहीं करता है। जब तक वह केवल इस स्रोत के साथ इस बिंदु पर एक अयोग्य संपादक नहीं बन जाता, संभवतः हमारा वही मतलब है जो प्राचीन साहित्य में हर जगह होता है कि ल्यूक वहां था। अब एक कारण यह है कि कई विद्वान सोचते हैं कि ल्यूक वहां नहीं था। वे कहते हैं, ठीक है, ल्यूक के पास कुछ विचार हैं जो पॉल की तुलना में एक अलग तरीके से लिखे गए हैं। यह सच है, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर रहा है कि ल्यूक पॉल था। कोई भी यह दावा नहीं कर रहा है कि पॉल ने प्रेरितों के काम की पुस्तक लिखी है। प्रत्येक लेखक चीजों को अपने तरीके से रखने जा रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। वे अपना स्वयं का जोर देने जा रहे हैं। ल्यूक और पॉल के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि वे कहते हैं कि पॉल कानून के खिलाफ था जबकि ल्यूक इसके पक्ष में था। लेकिन आज अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पॉल कानून के खिलाफ नहीं था, कि यह पॉल की गलत व्याख्या थी जिस पर यह विरोधाभास आधारित था। किसी भी मामले में हम त्रोआस से फिलिप्पी की यात्रा में पौलुस उसके साथ है। पॉल फिलिप्पी छोड़ देता है। हम रुकते हैं। वर्षों बाद पॉल फिलिप्पी वापस आता है। हम फिर से उठाते हैं। अब यदि आप उपस्थित होने का नाटक कर रहे थे तो आप सोचेंगे कि आप पुनरुत्थान के समय उपस्थित रहेंगे, आप पेंटेकोस्ट में उपस्थित रहेंगे। लेकिन इसके बजाय यह हम तब मौजूद होते हैं जब पॉल यात्रा कर रहा होता है। हम पूरे समय पृष्ठभूमि में रहते हैं। वह अपने बारे में नहीं लिख रहा है, लेकिन जब वह यात्रा कर रहे समूह का हिस्सा होता है तो वह खुद को इसमें शामिल करता है। यदि आप देखें कि हम कहां घटित होते हैं तो इसमें अधिनियम 24 से 27 से 2 वर्ष तक की अवधि शामिल है। हम देखते हैं कि पॉल ने यहूदिया में 2 साल तक हिरासत में बिताए, और जब पॉल रोम चला जाता है ल्यूक अभी भी उसके साथ है, प्रेरितों 27:1-2। जो हमें दिखाता है वह यह है कि ल्यूक ने यहूदिया में 2 साल तक का समय बिताया, शायद इसका अधिकांश समय तट पर कैसरिया में था। लेकिन उनके पास चश्मदीदों से बात करने के लिए काफी समय था, जिसमें वह यीशु के भाई जेम्स से भी मिले थे। तो इससे उसकी शैशव कथा, उसके स्रोत की व्याख्या हो सकती है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काफी समय बिताया जो शायद चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से चश्मदीदों को जानता था और उसके पास उसकी कई कहानियां थीं। उन्होंने प्रेरितों के काम 21 में प्रचारक फिलिप के घर में समय बिताया। इसलिए किसी भी मामले में हाँ, ल्यूक के पास इस पर काफी जानकारी थी। लूका 1:4 में लूका उस बात की भी अपील करता है जो चर्च में पहले से ही सामान्य ज्ञान थी। वह थियोफिलस से कहता है, जिसे वह यह कार्य समर्पित करता है, ताकि तुम उन बातों की निश्चितता को जान लो जो तुम्हें सिखाई गई हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आपको पिछले हफ्ते याद है जब आपने और मैंने साथ बैठकर गाजर खाई थी? जब तक आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नहीं होंगे, आप शायद मुझसे कहेंगे, मैंने पिछले सप्ताह आपके साथ गाजर नहीं खाई। मैं वास्तव में आपको यह विश्वास दिलाकर बच नहीं सकता कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं जानते। कम से कम मैं ऐसा बहुत आसानी से नहीं कर सकता। ल्यूक थियोफिलस से यह नहीं कहने जा रहा है, मैं उन चीजों की पुष्टि कर रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं, यदि उसकी पुस्तक की सामग्री ऐसी चीजें नहीं हैं जो थियोफिलस को पहले से ही ज्ञात थीं। कम से कम ल्यूक एक्ट्स में जो बुनियादी कहानियां हैं वे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में थियोफिलस ने पहले ही सुना था। प्रारंभिक चर्च के इन 4.5 दशकों के भीतर चर्च में यह पहले से ही सामान्य ज्ञान था। यह वैसा ही है जब पॉल अपने श्रोताओं के ज्ञान का हवाला देता है कि उसने 2 कुरिन्थियों 12:12 में चमत्कार किए थे। वह इसका हवाला कुरिन्थियों को देता है। वह कहता है, तुमने वह देखा। तो यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वह संभवतः बना सकता है। गॉस्पेल की विश्वसनीयता के अन्य प्रमाण। बाद में चर्च के केंद्र में होने वाली बहसें गायब हैं। 2.5 दशक नहीं, यीशु के पुनरुत्थान के 2 दशक बाद भी चर्च में प्रमुख बहसों में से एक यह थी कि क्या अन्य जातियों को यीशु में विश्वासियों के समुदाय का पूर्ण सदस्य बनने के लिए खतना करना होगा। ठीक है, यदि आरंभिक ईसाई बातें बना रहे होते तो आप सोचते कि कुछ लोगों ने कहावतें बना ली होती, हाँ तुम्हें खतना करना होगा, और दूसरों ने कहावतें बना ली होती, नहीं तुम्हें खतना करने की जरूरत नहीं है। गॉस्पेल में इस पर हमारे पास कोई कथन नहीं है जो हमें बताता है कि चर्च बातें नहीं बना रहा था। वे यीशु से जो कुछ प्राप्त करते थे उसे सटीकता से आगे बढ़ा रहे थे। उसी तरह न्यू टेस्टामेंट के सबसे शुरुआती लेखक पॉल कभी कभी सिनोप्टिक गॉस्पेल में हमारे पास मौजूद चीजों की पुष्टि करते हैं। वह जिस पुनरुत्थान परंपरा और गवाहों का हवाला देता है वह कहता है कि प्रभु भोज के बारे में मेरे पास जो कुछ भी था वह मुझे प्रभु से मिला, मैंने उसे आप तक पहुंचा दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास मार्क अध्याय 14 में प्रभु भोज के बारे में है। खैर, कुछ लोगों ने कहा है, अच्छा, उसे यह प्रभु से प्राप्त हुआ। यह किसी दर्शन या किसी चीज में रहा होगा। खैर, इसका मतलब यह हो सकता है। लेकिन फिर प्राचीन यहूदी शिक्षकों के लिए यह कहना एक सामान्य तकनीक थी कि हमें यह सिनाई पर्वत पर मूसा से प्राप्त हुआ था। उनका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने इसे सीधे उससे प्राप्त किया था, बल्कि यह कि उन्होंने इसे मौखिक परंपरा से प्राप्त किया था, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह सिनाई पर्वत पर मूसा के पास वापस चला गया। पॉल के मामले में उसे इनमें से कुछ चीजें अन्य कुछ शिष्यों से प्राप्त हो सकती थीं। और फिर यह उस पीढ़ी के भीतर है जिसमें ऐसा हुआ है। ये वे शिष्य हैं जो यीशु के साथ थे और वह इसे मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ाता है। एक कुरिन्थियों 7 में तलाक की बात, जिस पर मैं एक क्षण में वापस आऊंगा, यीशु की अंत समय की शिक्षाएं पॉल में हमारे पास जो कुछ भी है उसे प्रतिबिंबित करती हैं। प्राचीन काल से हमारे पास मौजूद कुछ अन्य स्रोतों, संभवतः यीशु की नैतिकता के कुछ स्रोतों के विपरीत, यह यीशु की शिक्षाओं में जो कुछ भी है उसकी बहुत बारीकी से प्रतिध्वनि करता है। अब तलाक की बात के साथ पॉल के पास यीशु के लिए एक कहावत बनाने का एक आदर्श अवसर है यदि वह चाहे। लेकिन इसके बजाय वह जो कुछ यीशु ने कहा था और जो वह स्वयं कहता है उसमें अंतर करता है। यीशु ने एक सामान्य बयान देते हुए कहा, ठीक है, कोई तलाक नहीं, अपने जीवन साथी को तलाक न दें। और पॉल को इसे एक विशेष स्थिति के लिए योग्य बनाना होगा। उनका कहना है कि यीशु ने यह कहा था, ठीक वैसे ही जैसे यीशु कहते हैं, तुमने इसे कहते हुए सुना है, और वह कानून का हवाला देते हैं और फिर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं। एक कुरिन्थियों 7 में पौलुस ने कहा, प्रभु यही कहता है। अध्याय 7 श्लोक 10 से 12। फिर वह कहता है, अब मैं यही कहता हूं। यीशु का खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यीशु ने जो कहा है उसे एक विशेष स्थिति के लिए उपयुक्त ठहरा रहे हैं जिसे यीशु ने संबोधित नहीं किया है। वह विशेष रूप से यीशु की आधिकारिक शिक्षा को अपनी शिक्षा से अलग करता है जो प्रेरित भी है, लेकिन यह वह नहीं है जो यीशु ने कहा था। उसी तरह यदि लेखक स्वतंत्र रूप से कहानियों का आविष्कार कर रहे होते तो हमारे पास उस तरह का ओवरलैप नहीं होता जैसा हमारे पास सिनोप्टिक गॉस्पेल या विभिन्न समानताएं हैं जो हमारे पास जॉन में हैं, भले ही जॉन ज्यादातर अलग अलग चीजों पर जोर देते हैं। और इसे ईपी सैंडर्स ने नोट किया है, जिनका मैं हवाला देना पसंद करता हूं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मैंने ड्यूक में उनके साथ अध्ययन किया था। मैं कुछ समय के लिए उनका टीए था। लेकिन साथ ही यह आमतौर पर नोट किया जाता है, यदि आप सुसमाचारों के बीच मतभेदों को देखें तो हम उदाहरण दे सकते हैं। इनमें से अधिकतर अंतर बहुत मामूली हैं। उदाहरण के लिए सूखे हाथ वाला आदमी, उसे अपना हाथ फैलाना होगा। ल्यूक निर्दिष्ट करता है कि यह दाहिना हाथ है जो सूख गया है। यह मैथ्यू या मार्क द्वारा निर्दिष्ट नहीं है। खैर, यह वास्तव में एक मामूली विवरण है इत्यादि। इसलिए मैं सुसमाचारों के माध्यम से गया, सभी सुसमाचारों के माध्यम से, और विविधता की सीमा देखी। यह उसी प्रकार की विविधता है जो अन्य प्राचीन जीवनियों में है। यह बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं था। खैर, कुछ लोगों ने सुसमाचार की विश्वसनीयता पर आपत्ति जताई है। इनमें से एक आपत्ति पर मैं अधिक समय खर्च नहीं करने जा रहा हूं। यह नैतिक आपत्ति है। लोगों ने कभी कभी कहा है, ठीक है, आप जानते हैं, यदि आप मुझे किसी अन्य प्राचीन कार्य की विश्वसनीयता के बारे में जानकारी दे रहे होते तो मैं इस पर विश्वास करता। लेकिन देखिए, अगर मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूं तो मुझे अपने जीने का तरीका बदलना होगा। खैर, यह कोई बौद्धिक आपत्ति नहीं है, यह एक नैतिक आपत्ति है, और जरूरी नहीं कि इससे बौद्धिक रूप से निपटा जाए। जब आप उस स्तर तक नीचे आते हैं तो आप पश्चाताप का आह्वान कर रहे होते हैं। आप उस व्यक्ति के साथ तर्क कर रहे हैं, आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी हो, लेकिन यह कोई बौद्धिक मुद्दा नहीं है। लेकिन दूसरा मुद्दा खोए हुए सुसमाचार का है। लोग कभी कभी खोए हुए सुसमाचारों पर प्रश्न उठाते हैं। हालांकि खोए हुए सुसमाचार यह एक मिथ्या नाम है, वे खोए नहीं थे, उन्हें अधिकतर त्याग दिया गया। लेकिन वैसे भी चार गॉस्पेल, यदि आप प्रारंभिक कैनन सूचियों को देखें तो मार्कियन के अपवाद के साथ चार गॉस्पेल को प्रारंभिक कैनन सूचियों में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, जिन्हें बहुत विलक्षण माना जाता था, और वह रोमन साम्राज्य के पार था। यह पहले से ही दूसरी शताब्दी में है। मार्सियन को छोड़कर सभी ईसाई गॉस्पेल स्वीकार कर रहे थे। वह फ्रांस, आयरेनियस से लेकर सीरिया, टैटियन तक वे चार सुसमाचारों को स्वीकार कर रहे थे। विहित विवाद थे, लेकिन उनमें सुसमाचार शामिल नहीं थे, और इसलिए हम यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। 40 प्राचीन कैनन सूचियों में से केवल एक ने इन चार के अलावा किसी भी सुसमाचार का उल्लेख किया था, और वह थॉमस का सुसमाचार था। तो विशाल बहुमत 95% या उससे अधिक ने इन चार और केवल इन चार को स्वीकार किया। खोए हुए सुसमाचारों के संदर्भ में, ठीक है, जिन्हें हम प्राचीन दुनिया के सुसमाचार कहते हैं, वे दो प्रकार के हैं। एक का संदर्भ उस चीज से है जिसे हम अपोक्रिफल गॉस्पेल कहते हैं। ये प्राचीन काल में उपन्यासों के उत्कर्ष काल, दूसरी शताब्दी के अंत और तीसरी शताब्दी के प्रारंभ से आते हैं, और ये उपन्यास हैं। अब मुझे उपन्यासों से कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है तो यह ठीक है। आप अप्रामाणिक सुसमाचार पढ़ सकते हैं, वे उपन्यास हैं। लेकिन यह कहने के लिए कि अपोक्रिफल गॉस्पेल आपको यीशु के बारे में विश्वसनीय जानकारी दे रहे हैं, उनके पास उसी प्रकार की गैलीलियन और यहूदी जानकारी नहीं है। प्राचीन काल में उपन्यासकार सामान्यतः पीछे जाकर ऐतिहासिक विवरणों को सही करने की परवाह नहीं करते थे, और अप्रामाणिक सुसमाचारों को पीछे जाकर ऐतिहासिक विवरणों को सही करने की कोई परवाह नहीं है। गूढ़ ज्ञानवादी सुसमाचार एक अलग कहानी है। वे बिल्कुल उपन्यास नहीं हैं। वे एक अलग शैली हैं, मुख्यतः कहावतों की। फिर से, कहावतों के संग्रह में कुछ भी गलत नहीं है। कहावतें कहावतों का संग्रह है। मैथ्यू का लॉजिया कहावतों का एक संग्रह हो सकता है। निःसंदेह इस बारे में बहस चल रही है। लेकिन हमारे पास गूढ़ ज्ञानवादी सुसमाचारों में जो कुछ है वह दूसरी शताब्दी या उसके बाद के गूढ़ ज्ञानवादी तत्व हैं। इनमें से कोई भी पहली सदी का नहीं है। थॉमस का सुसमाचार संभवतः इनमें से सबसे पुराना है, संभवतः यीशु के बारे में किसी भी वास्तविक जानकारी को शामिल करने की सबसे अधिक संभावना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी जानकारी वास्तविक है? खैर, यह हमारे पहली सदी के स्रोतों से कहां सहमत है। थॉमस का गॉस्पेल आमतौर पर दूसरी शताब्दी के मध्य का है। एक विद्वान निकोलस पेरिन ने डायटेसरोन पर इसकी निर्भरता के लिए तर्क दिया है, जो इसे 170 ई का माना जाता है। लेकिन भले ही यह दूसरी शताब्दी के मध्य का समय हो, हम लगभग एक शताब्दी के बाद की बात कर रहे हैं, जब अधिकांश विद्वान मार्क के सुसमाचार की तारीख बताते हैं। और थॉमस हमारे गैरविहित सुसमाचारों में सबसे पहला है। बाकी सब तो बहुत बाद में हैं। लेकिन यहां तक कि थॉमस, जिसमें यीशु के कथनों के सबसे संभावित अंश शामिल हैं, में गूढ़ ज्ञानवादी तत्व हैं, एक प्रकार का गूढ़ ज्ञानवाद जिसे दूसरी शताब्दी तक प्रलेखित नहीं किया गया था। एक बार फिर कुछ पूर्व विद्वानों ने जो कहा है उसके विपरीत। एडविन यामूची ने उस मामले को शांत कर दिया है, और आज अधिकांश विद्वान यामूची का अनुसरण करते हुए, विल्सन का अनुसरण करते हुए, अन्य विद्वानों का अनुसरण करते हुए, यदि आप पीछे जाएं और साक्ष्य देखें, तो अधिकांश सामग्री उससे बहुत बात की है। कुछ लोगों ने अन्य लुप्त सुसमाचारों के लिए तर्क दिया है। एक विद्वान ने तर्क दिया है कि क्यों एक खोया हुआ सुसमाचार है। लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि विद्वान क्यों के बारे में एक सदी से भी अधिक समय से बात कर रहे हैं। यह खोया नहीं है, यह काल्पनिक और पुनर्निर्मित है। और जिस तरह से वह विद्वान इसका पुनर्निर्माण करता है, वह और भी अधिक काल्पनिक है। लेकिन कुछ विद्वान इससे भी आगे बढ़ गए हैं। कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, ठीक है, हम विहित सुसमाचारों पर निर्भर नहीं रहेंगे। कैनन में मौजूद मार्क के सुसमाचार के विपरीत हम मार्क के गुप्त सुसमाचार पर निर्भर रहेंगे। मरकुस का गुप्त सुसमाचार एक बहुत ही संक्षिप्त पाठ है, और इसकी खोज के संबंध में यह दिलचस्प है। एक उपन्यास था जिसमें लॉर्ड मॉर्टन ने एक निश्चित मठ में एक विध्वंसक पांडुलिपि की खोज की थी। खैर, उसके एक साल बाद मॉर्टन स्मिथ उसी मठ में गए और एक पांडुलिपि की खोज की। इसकी जांच करने वाले कुछ विद्वानों ने एक जालसाज के झटके और स्मिथ की ग्रीक शैली के निशान देखे हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्मिथ ने आवश्यक रूप से दस्तावेज में जालसाजी की है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह एक प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। किसी ने दस्तावेज में फर्जीवाड़ा किया है। यह आवश्यक नहीं कि वह स्मिथ ही हो। इसमें यीशु को एक समलैंगिक जादूगर के रूप में चित्रित किया गया है, जो समलैंगिकता की 20वीं सदी की पश्चिमी समझ का उपयोग करता है, जो पहली सदी में मौजूद नहीं थी। इसमें 20वीं सदी के कुछ गंदे चुटकुले शामिल हैं, और कुछ विद्वानों द्वारा इसका उपयोग इस तरह किया गया है, जैसे कि यह एक पूर्व सुसमाचार स्रोत हो। लेकिन अब कई विद्वान मानते हैं कि यह 20वीं सदी की जालसाजी है, और किसी भी मामले में यह पहली शताब्दी से नहीं है। स्मिथ का मानना है कि जिस पांडुलिपि की खोज की गई है वह 19वीं सदी की है। खैर, ये 19वीं सदी की बात है। पांडुलिपि किसी तरह गायब हो गई है। यह 19वीं शताब्दी की थी, और यह पांडुलिपि किसी ऐसी चीज की प्रति थी जो कथित तौर पर दूसरी शताब्दी के अंत में चली गई थी। तो किसी भी मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहली शताब्दी तक जाता हो। इसलिए जब लोग खोए हुए सुसमाचारों के बारे में बात करते हैं, तो वे वास्तव में उन चीजों से निपट रहे होते हैं जो वास्तव में अच्छे स्रोत नहीं हैं। यदि आप यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, तो चर्च के पास चार सुसमाचारों में जो स्रोत हैं, वे काम करने के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं। अब मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो वास्तव में इसे पसंद करेगा यदि हमें पहली सदी के कुछ और स्रोत मिलें। यह ऐतिहासिक कार्य के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ और इस इतिहासकार के एक अंश, वहाँ के एक अंश और उस इतिहासकार के अलावा और कुछ नहीं है, जो सुसमाचारों से जो हम पहले से ही जानते हैं उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि कैनन अब इससे अधिक लंबा नहीं है, क्योंकि जब मुझे एक सेमेस्टर में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाना होता है तो अगर हमारे पास चार से अधिक गॉस्पेल होते तो मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन मुझे अब भी अच्छा लगेगा अगर हम कुछ और चीजें खोज लें। तो सुसमाचार की ऐतिहासिक विश्वसनीयता से आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो उसके संबंध में सामने आता है, और वह चमत्कार रिपोर्ट का प्रश्न है। क्योंकि मार्क के सुसमाचार का लगभग एक तिहाई हिस्सा ऐसे अंशों से बना है जो चमत्कारों या राक्षसों को बाहर निकालने से संबंधित हैं। हालांकि यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पाठकों के लिए कोई समस्या नहीं है, यह परंपरागत रूप से पश्चिम में एक समस्या रही है, और मूल रूप से सुसमाचार के बारे में बहुत सारे पश्चिमी संदेह का आधार था। उन्होंने कहा, ठीक है, आप जानते हैं मरकुस सबसे प्रारंभिक सुसमाचार है और मरकुस के पास ये सभी चमत्कार हैं। हम मार्क की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए इस पर अपने काम में मैंने 1100 पेज का एक शोध प्रोजेक्ट और चमत्कारिक रिपोर्ट के इस मुद्दे पर 1100 पेज की एक किताब लिखी। हमें इस प्रश्न पर गौर करना होगा कि स्रोत कितने विश्वसनीय हैं। हमने पहले से ही प्राचीन जीवनियों और सुसमाचारों के प्रश्न पर उनके स्रोतों के प्रति सावधान रहते हुए विचार किया है। मैथ्यू और ल्यूक काफी हद तक मार्क का उपयोग करते हैं। चमत्कारी कहानियां मार्क के सुसमाचार का लगभग एक तिहाई और अधिनियमों की पुस्तक का लगभग 20% हिस्सा हैं। मैथ्यू, ल्यूक और जॉन में भी आपके पास प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन पश्चिमी विद्वान अक्सर सुसमाचारों पर सवाल उठाते हैं क्योंकि उनमें पहले के पश्चिमी विद्वानों के आधार पर चमत्कार संबंधी रिपोर्टें शामिल होती हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने कभी भी सुसमाचारों जैसे नाटकीय चमत्कारों का दावा नहीं किया है। अब आप में से कई लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि क्या आप बेहतर जानते हैं कि आप कुछ ऐसा जानते हैं जो कई पश्चिमी विद्वान कम से कम अतीत में नहीं जानते थे। डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस एक न्यू टेस्टामेंट विद्वान थे जो 1800 के दशक की शुरुआत से 1800 के दशक के मध्य तक जर्मन न्यू टेस्टामेंट विद्वान थे, और उन्होंने तर्क दिया कि सुसमाचार मिथकों से भरे होने चाहिए। वास्तव में उन्होंने सुसमाचारों की तारीख सबसे बाद में लिखी जितनी आज कोई भी नहीं लिख सकता। उन्होंने कहा कि वे मिथक और किंवदंतियों से भरे होंगे क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी कभी यह दावा नहीं करेंगे कि उन्होंने चमत्कार देखे हैं, और ये बातें केवल किंवदंतियों से ही सामने आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस का एडवर्ड मोरिका नाम का एक दोस्त था। एडवर्ड मोरिका रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के कारण चलने में असमर्थ थे, लेकिन मोरिका ने जर्मन लूथरन पादरी जोहान क्रिस्टोफ ब्लमहार्ट से मुलाकात की। ब्लमहार्ट 1800 के दशक में उपचार और भूत भगाने के मंत्रालय के लिए जाना जाता था, और वास्तव में स्ट्रॉस और बुल्टमैन की जर्मन विद्वता की एक अलग पंक्ति बार्थ और मोल्टमैन और अन्य ने वास्तव में ब्लमहार्ट की गवाही का सम्मान किया है। खैर, स्ट्रॉस के मित्र एडवर्ड मोरिका ब्लमहार्ट का दौरा करने के बाद ठीक हो गए थे, और जब उन्होंने स्ट्रॉस को पत्र लिखा तो वह पहाड़ों में लंबी पैदल यात्रा कर रहे थे। स्ट्रॉस ने कहा, नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, यह कोई चमत्कार नहीं है। रीढ़ की हड्डी की समस्या के निदान के बावजूद वह मानसिक रूप से चलने में असमर्थ रहा होगा। ठीक है, कम से कम स्ट्रॉस यह नहीं कह सकते थे कि यह एक किंवदंती थी जो पीढ़ियों तक लोगों द्वारा कहानियां दोहराने के बाद उत्पन्न हुई। स्ट्रॉस को स्वयं बेहतर पता होना चाहिए था। अब जहां तक यह सवाल है कि क्या ये चीजें वास्तव में ब्लमहार्ट के समय में घटित हो सकती थीं, हमारे पास वास्तव में पत्र हैं। हमारे पास वास्तव में ब्लमहार्ट की अपनी पत्रिकाएं और अन्य लोगों की पत्रिकाएं हैं जो हमें दिखाती हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हैं, एक पीढ़ी बाद के भी नहीं बल्कि ब्लमहार्ट के समय से कि ये चीजें घटित हो रही थीं। अच्छा, क्या आज विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्टें हैं? हमारे पास चिकित्सा स्रोत हैं। मैं आपको केवल एक नमूना देने जा रहा हूं। याद रखें, किताब 1100 पृष्ठों की थी। यह पाठ्यक्रम इस बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नमूना देने जा रहा हूं, उपचार के चमत्कारों पर डॉक्टर रेक्स गार्डनर की एक किताब। वह एक मेडिकल डॉक्टर है। मैंने इस पर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के लिए भी लिखा था। उनकी कहानियों में से एक 9 साल की लड़की की थी जो श्रवण यंत्र के बिना बधिर थी, लेकिन उपचार के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह तुरंत ठीक हो गई। जिस ऑडियोलॉजिस्ट ने उसके ठीक होने से ठीक एक दिन पहले उसका परीक्षण किया था, उसने कहा, नहीं, यह असंभव है, यह श्रवण तंत्रिका क्षति के कारण होता है, यह मनोदैहिक नहीं हो सकता, यह उल्टा नहीं होता। लेकिन अगले दिन उन्होंने उसका परीक्षण किया और पाया कि उसकी सुनने की शक्ति सामान्य थी। प्रत्यक्षदर्शी, जिनमें से कुछ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मोजाम्बिक में यीशु के नाम पर बहरे गैरीसाइयों के उपचार की रिपोर्ट करते हैं, और यह उन गांवों में है जो पूरी तरह से गैरीसाई थे, जिनमें कोई चर्च नहीं था। विश्वासी अंदर जाएंगे, वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। कभी कभी वे केवल उपदेश दे रहे होते थे और बीमार ठीक हो जाते थे। यह बिल्कुल वही है जो ईश्वर कर रहा था, ठीक गॉस्पेल और अधिनियमों की तरह, क्योंकि यह अभूतपूर्व सुसमाचार प्रचार का समय है, और परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहा था। गांव के लोग जानते थे कि ये लोग बहरे हैं। तो अगले दिन गांव में एक चर्च शुरू किया गया, और मोजाम्बिक में एक संपूर्ण क्षेत्र जिसे पहले गैरीसाई के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अब इस पुनरुद्धार के कारण ईसाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खैर, अब इसे चिकित्सा परीक्षणों के साथ प्रलेखित किया गया है, जिसमें सितंबर 2010 में दक्षिणी मेडिकल जर्नल में एक प्रकाशन भी शामिल है। अब स्वाभाविक रूप से जो आलोचक इस संभावना से सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा, ठीक है, ग्रामीण मोजाम्बिक में परीक्षण की स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर निर्भर करते हुए कि आप यह वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है कि यह अब बेहतर हो, लेकिन ग्रामीण मोजाम्बिक में परीक्षण की स्थितियां अच्छी नहीं थीं। खैर, यह सच था। हालांकि यदि आप आगे का अध्ययन पढ़ते हैं, जो कैंडी गुंथर ब्राउन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2012 टेस्टिंग प्रेयर द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो उसमें उसका एक अध्याय है। वह यह तर्क नहीं दे रही है कि ये चीजें चमत्कार हैं। वह उस चर्चा से पूरी तरह बाहर रह रही है, लेकिन वह दिखा रही है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोग बहरे से बहरे नहीं होने की स्थिति में चले गए, उनके लिए प्रार्थना किए जाने के तुरंत बाद वे अंधे से अंधे नहीं हो गए। और साक्ष्य, मुझे लगता है कि यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यह आकर्षक लगेगा। अधिकांश सामान्य लोग इसे सम्मोहक मानेंगे। एक अन्य उदाहरण लिसा लारियोस है, यहां तक कि उसकी हड्डियां भी ठीक हो गईं। उसे हड्डी की अपक्षयी बीमारी थी, इससे वह मर रही थी। उसके माता पिता ने उसे अभी तक नहीं बताया था। वह किशोरी थी, वह व्हीलचेयर पर थी, और वह एक उपचार धर्मयुद्ध में चली गई। और धर्मयुद्ध के उपचार के बारे में आप जो भी सोचते हो, वास्तव में किसी को भी इस धर्मयुद्ध में उसके लिए प्रार्थना करने का मौका नहीं मिला। भगवान ने बस संप्रभुता पूर्वक उसे छुआ और वह उछल पड़ी और इधर उधर भाग गई और उसके माता पिता आश्चर्यचकित थे क्योंकि वह इससे पहले चल भी नहीं सकती थी। और परीक्षण से पता चला कि उसकी जो हड्डियां खराब हो गई थीं, वे भी ठीक हो गई थीं। ऐसा अपने आप नहीं होता। दूसरा उदाहरण ब्रूस वान माता का उदाहरण है, जहां हमारे पास ब्रूस के साथ जो हुआ उसके महत्वपूर्ण चिकित्सीय साक्ष्य हैं। वह एक सेमीट्रक के नीचे कुचला गया था और इस दुर्घटना में उसकी छोटी आंत का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। कई सर्जरी के बाद उनकी छोटी आंत का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था और उनकी छोटी आंत के एक हिस्से में, जो कि बिल्कुल आवश्यक है, आमतौर पर 350 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसके पास केवल 25 सेंटीमीटर ही बचा था। वह 180 पाउंड से घटकर 125 पाउंड रह गया। वह धीरे धीरे भूखा मर रहा था। किसी ने नेतृत्व महसूस किया, उसके एक मित्र ने महसूस किया कि उसे न्यूयॉर्क से विस्कॉन्सिन एक अलग राज्य के लिए उड़ान भरनी पड़ी और ब्रूस के लिए प्रार्थना करनी पड़ी। और जब वह उसके लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसे लगा कि यीशु के नाम पर छोटी आंत को बढ़ने का आदेश दिया गया है और ब्रूस को अपने शरीर में बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। ब्रूस ठीक हो गया। परीक्षण से पता चलता है, नहीं, ऐसा नहीं था कि उसकी छोटी आंत औसत लंबाई तक बढ़ गई थी, बल्कि उसकी छोटी आंत उस लंबाई तक बढ़ गई थी जो उसके ठीक होने के लिए आवश्यक थी। छोटी आंत अपनी सामान्य लंबाई से लगभग आधी है, लेकिन इसकी लंबाई पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई है। यह अब पूरी तरह कार्यात्मक है और यह हमारे पास मौजूद रेडियोलॉजी रिपोर्टों में प्रमाणित है। तो लोग कभी कभी कहते हैं, ठीक है, यदि चमत्कार होता है तो आपका एक अंग बड़ा क्यों नहीं हो जाता। ठीक है, आपको गॉस्पेल प्रदर्शित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि गॉस्पेल में आपके पास कोई अंग नहीं है। लेकिन यह एक अंग के बढ़ने के बराबर है क्योंकि एक वयस्क में छोटी आंत, आप जानते हैं, यह चौड़ी हो सकती है लेकिन लंबी नहीं हो सकती, तो यह उसके बराबर है। हमारे पास अन्य खाते हैं। दोनान्यान निम्बारा ने मुझे नाइजीरिया से टूटी हुई पीठ के ठीक होने का विवरण दिया। हमारे पास डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित गहरे घावों का उपचार है। कार्ल कॉकरेल, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। जो लोग कहते हैं कि ये चीजें दुनिया के कुछ हिस्सों में ही होती हैं, वे वास्तव में कई जगहों पर होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वे दूसरों की तुलना में अधिक नाटकीय होती हैं। वह छुट्टियों पर एक राज्य में थे। उसका टखना टूट गया। उनकी उम्र 60 के आसपास थी और उनका टखना इतनी गंभीर रूप से टूट गया था कि वहां के डॉक्टर ने उन्हें प्लास्टर में डाल दिया और उन्हें रात भर अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन उस रात उसने विश्वास किया कि प्रभु ने उसे दर्शन दिए और उसे ठीक किया। और अगले दिन उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या वह घर जा सकता है, और डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकते हैं, बस कास्ट चालू रखें और वहां पहुंचते ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो वह घर चला गया। अब स्पष्ट रूप से रेडियोलॉजी रिपोर्ट में टखने में फ्रैक्चर की बात कही गई है और यही उनका डिस्चार्ज था। जब वह घर वापस गया तो उसके डॉक्टर ने एक नई रेडियोलॉजी रिपोर्ट नियुक्त की और यह पहली रेडियोलॉजी रिपोर्ट के लगभग 8 दिन बाद वापस आई। मैं डॉक्टरों के नाम काट देता हूं। मेरे पास मूल फॉर्म है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ गोपनीयता कानूनों के कारण मैं डॉक्टर के नाम काट देता हूं। लेकिन डॉक्टर नई रेडियोलॉजी रिपोर्ट देखता है। वह कहते हैं, न केवल आपका टखना टूटा हुआ है बल्कि आपका टखना कभी टूटा ही नहीं है। और कार्ल ने उन्हें पहली रेडियोलॉजी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा, अब वह टखना टूट गया है। एक और उदाहरण जिसे हम देख सकते हैं वह है जॉय वानीफ्रे। इनमें से कई लोगों को इन बिंदुओं पर नाटकीय आध्यात्मिक मुठभेड़ भी हुई, लेकिन उसके पास वर्टिकल हेट्रोफोरिया का ऐसा क्लासिक मामला था कि मूल रूप से उसका इस्तेमाल किया गया था। उसकी तस्वीर का इस्तेमाल इस स्थिति का विज्ञापन करने वाले पैम्फलेट में किया गया था, लेकिन जब किसी ने उसके लिए प्रार्थना की तो वह नाटकीय रूप से ठीक हो गई। वह टेलर यूनिवर्सिटी की छात्रा थी, वह नाटकीय रूप से ठीक हो गई, और न केवल वर्टिकल हेट्रोफोरिया बल्कि उसकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक हो गई, जिससे अब उसकी दृष्टि 20 से 20 हो गई है, जो मैं चाहता था कि मेरे पास होती। क्यूबा में डॉक्टर मिर्ता वेनेरोबोजा, वह एक बैप्टिस्ट प्रचारक हैं, लेकिन वह एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं। वह प्रार्थना के आधे घंटे से भी कम समय में गंभीर जले हुए लोगों के ठीक होने का वर्णन करती है। वह चश्मदीद गवाह थी, वह उस समय वहीं थी। कैथोलिक चिकित्सा दस्तावेज, इसमें बहुत कुछ है और उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब मैं कुछ अन्य चश्मदीदों की गवाही की ओर बढ़ रहा हूं, जो डॉक्टरों की नहीं है बल्कि ऐसे मामलों की है जहां सामान्य प्रत्यक्षदर्शी इस प्रकार की चीजों की पुष्टि कर सकते हैं कि ये नाटकीय हैं। प्रत्यक्षदर्शी गवाही का उपयोग समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पत्रकारिता, इतिहास लेखन और कानून में साक्ष्य के रूप में किया जाता है। दूसरे शब्दों में, हम कई विषयों में प्रत्यक्षदर्शी गवाही का उपयोग करते हैं, और जब हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो अतीत में घटित हुई हैं, तो हमें मानव अतीत के भीतर प्रत्यक्षदर्शी गवाही का उपयोग करना होगा। इसलिए मैं अपने साक्षात्कारों या प्रकाशित स्रोतों से कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं जहां मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे विश्वसनीय हैं। एक सिद्धांत जिसका मैं पालन कर रहा हूं वह यह है कि कम संख्या में चश्मदीदों की गिनती अधिक संख्या में संदेह करने वाले गैर चश्मदीदों की तुलना में अधिक होनी चाहिए। हम इसे अधिकांश अन्य प्रकार के दावों पर लागू करेंगे। उदाहरण के लिए, कम से कम मेरी संस्कृति में यदि कोई यातायात दुर्घटना होती है तो एक पुलिस अधिकारी उस पर रिपोर्ट ले रहा है, गवाहों का साक्षात्कार ले रहा है, और कोई आता है और गवाहों का खंडन करता है और कहता है, ऐसा नहीं हुआ था। तो अधिकारी कहता है, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या होते देखा? और वह व्यक्ति उत्तर देता है, मैंने कुछ भी घटित होते नहीं देखा क्योंकि मैं वहां नहीं था, इसलिए मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। हम इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे। उसी तरह जो लोग कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि चमत्कार नहीं होते क्योंकि मैंने कभी चमत्कार नहीं देखा, यह कोई बहुत अच्छा तर्क नहीं है जब अन्य लोग होते हैं, वास्तव में लाखों अन्य लोग जो ऐसा कहते हैं उन्हें देखा है। अब मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि कोई भी मेरी बात का गलत मतलब न निकाले। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि जिसने भी प्रार्थना की वह ठीक हो गया। उदाहरण के लिए, जैसा कि आप मेरे सिर को देखकर देख सकते हैं, मुझे पुरुषों की तरह गंजापन है, मैं चश्मा पहनता हूं इत्यादि, और मेरे पास कुछ अन्य चीजें भी हैं जो अधिक गंभीर हैं, जिनके बारे में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ हमेशा ठीक नहीं होता है, और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारे पास ऐसे समय के महत्वपूर्ण दावे हैं जब भगवान चमत्कार करते हैं। उदाहरण के लिए, वोन सूक और जूली मा, वे निश्चित रूप से बहुत विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी हैं। यूं, जिन्होंने चमत्कारों के विरुद्ध तर्क दिया, ने कहा, ठीक है, हमारे पास चमत्कारों का कोई विश्वसनीय चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे विश्वसनीय चश्मदीद गवाह हैं। वोन सूक और जूली दोनों के पास पीएचडी है। वोन सूक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर मिशन स्टडीज के निदेशक हैं। और जब उन्होंने किसी के लिए प्रार्थना की तो एक बड़ा गंडमाला तुरंत कई गवाहों के साथ सार्वजनिक रूप से गायब हो गया, जिनमें निश्चित रूप से स्वयं भी शामिल थे। मेरे एक अन्य मित्र का एक और उदाहरण। ये मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं कम से कम उनकी विश्वसनीयता की पुष्टि तो कर सकता हूँ। लूथर ओकॉनर यूनाइटेड थियोलॉजिकल सेमिनरी में प्रोफेसर हैं और उन्होंने फिलीपींस की एक महिला के लिए प्रार्थना की जिसके पैर में न मुड़ने वाला धातु का प्रत्यारोपण हुआ था, और जब उसने उसके लिए प्रार्थना की तो उसे अपने पैर में गर्मी जैसा कुछ महसूस हुआ और वह पहले पैर मोड़ने में सक्षम नहीं थी, लेकिन बाद में वह पैर मोड़ सकी और वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अब मेरे पास फिलीपींस में इसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मेटल इम्प्लांट गायब हुआ या नहीं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यदि यह अभी भी वहां था तो अब यह एक मोड़ने योग्य धातु प्रत्यारोपण था। लेकिन मेरे एक अन्य मित्र डैनी मैककेन ने नाइजीरिया में कई साल बिताए, कुछ दशक नाइजीरिया में बिताए, और मैंने नाइजीरिया में उनके साथ काम करते हुए 3 गर्मियां बिताई, और इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास नाइजीरिया से कोई खाता है। उन्होंने कहा, वास्तव में मुझे अमेरिका से एक खाता मिला है। जब मैं एक लड़का था, मेरे छोटे भाई का पूरा शरीर जल गया था। वह एक टब में गिर गया जो तीखा गर्म पानी से भरा हुआ था, और उसकी त्वचा इतनी जल गई थी कि जब डॉक्टर उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे तो त्वचा फट रही थी। इसलिए परिवार और उनके पादरी प्रार्थना के लिए एकत्र हुए। डैनी वेस्लेयन परंपरा से हैं। वे प्रार्थना के लिए एकत्र हुए। मैं आपको बस यह दिखा रहा हूं कि ऐसा होता है। यह चर्चों के एक समूह तक सीमित नहीं है। वे प्रार्थना के लिए एकत्र हुए, और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो उसने अचानक देखा कि उसके छोटे भाई ने रोना बंद कर दिया है। उसने ऊपर देखा और उसके भाई की त्वचा पूरी तरह से गुलाबी और नई हो गई थी, जैसे कि वह कभी जला ही न हो। और डैनी कहते हैं कि मुझे यह ऐसे याद है जैसे यह कल की बात हो, और वह मुझे इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी देने में सक्षम था। यह ऐसी चीज है जो आपकी याददाश्त में बस जाती है। विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शियों के संदर्भ में मुझे आशा है कि मुझे भी एक माना जाएगा। मेरे भाई क्रिस, जिन्होंने बाद में PhD भी की भौतिकी में, और जब यह घटित हुआ तब मैं उपस्थित था। मैं अपने परिवार में धर्म परिवर्तन करने वाला पहला व्यक्ति था। फिर मेरा छोटा भाई भी ईसाई बन गया। खैर, हम एक नर्सिंग होम बाइबल अध्ययन में मदद कर रहे थे। हम दोनों ईसाई धर्म में बिल्कुल नए थे। वहां बारबरा नाम की एक वृद्ध महिला थी। बारबरा हमेशा कहती रहती थी, काश मैं चल पाती, काश मैं काम कर पाता। हर हफ्ते वह अपनी व्हीलचेयर से ऐसा कहती थी। आखिरकार एक सप्ताह में बाइबल अध्ययन नेता, जो उस समय फुलर सेमिनरी में एक सेमिनारियन था, ने कुछ करने का फैसला किया। मैं यह अनुशंसा नहीं कर रहा हूं कि आप ऐसा करें। यह विशेष रूप से पवित्र आत्मा ही था जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। यदि प्रभु आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत बुरी बात हो सकती है। लेकिन फिर भी वह उसके पास गया और कहा, मैं इससे थक गया हूं। उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो। उसे कुर्सी से उठाया। अब यदि आस्था एक पूर्वाग्रह है तो इस मामले में मुझ पर इसका आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं भयभीत था और मैं उसके चेहरे के भाव से बता सकता था कि वह भी भयभीत थी। तो यदि यह मनोदैहिक था तो यह उसका मनोदैहिक नहीं था, लेकिन वह भयभीत थी। हम दोनों को लगा कि वह फर्श पर गिरने वाली है, लेकिन वह उसे कमरे के चारों ओर घुमाता रहा। और तब से बारबरा चल सकती थी। और तब से बाइबल अध्ययन में वह कहती थी, मुझे यह बाइबल अध्ययन बहुत पसंद है। मुझे यह बाइबल अध्ययन बहुत पसंद है। मैं अब चंगांधत्व के कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं, जो फिर से सामान्य रूप से मनोदैहिक नहीं है, खासकर जब यह मोतियाबिंद धब्बेदार अधपतन या ऐसा कुछ के कारण होता है। मुझे अंधेपन के ठीक होने की लगभग 350 रिपोर्टें मिली। जब मैं किताब पर काम कर रहा था तो मुझे वास्तव में किताब के बाद से और भी रिपोर्टें मिली। अब कुछ स्रोत दूसरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं, लेकिन इनमें से कई स्रोत अत्यधिक विश्वसनीय हैं। फिर से रेक्स गार्डनर की पुस्तक हीलिंग मिरेकल्स किसी के अंधेपन से ठीक होने के कुछ विवरण देती है। ये वे चीजें हैं जिन पर उन्होंने चिकित्सा दस्तावेजीकरण पर नजर रखी, और मैं उन लोगों की कुछ रिपोर्टों पर जा रहा हूं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने ये चीजें देखी हैं। एक उत्तर भारत में हुआ। फ्लिंट मैकलॉगलिन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं, 2004 में वह और कुछ अन्य दोस्त उत्तर भारत में थे और उन्होंने वहां एक अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, और उस अंधे की आंखें धुंधली थीं, इसलिए निःसंदेह वह मोतियाबिंद के कारण हुआ था। खैर, आंखें ठीक हो गईं। ये उसके बाद की उस आदमी की तस्वीर है। यह वह क्षेत्र है जहां वह आदमी भगवान की स्तुति करते हुए चक्कर लगाता था, क्योंकि वह अंधेपन से ठीक हो गया था, और यहीं उन्होंने अपनी कहानी बताई। और वह रोने लगा, और जिन अन्य लोगों से मैंने सलाह ली थी उनमें से एक ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा उन अतिरिक्त चश्मदीदों से सलाह लेता हूं जो तब मौजूद थे जब वे उपलब्ध होते थे। अन्य चश्मदीदों में से एक, जब वह रोने लगा तो उसने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने हमेशा बच्चों की आवाज तो सुनी है, लेकिन उनके चेहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे हैं। और यह वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों के साथ उनकी एक तस्वीर है। अब डॉक्टर बंगुशबाकु काटो कांगो डीआरसी से मेरे एक मित्र हैं। वह एक ऐसे संप्रदाय से है जो पश्चिम में इंजील भाइयों से संबद्ध है। वह बुनिया में शालोम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। हम एक साथ मिल रहे थे, अफ्रीका में जातीय सुलह के बारे में बात कर रहे थे जिस पर हमने काम किया है। लेकिन क्योंकि मैं चमत्कारों की किताब पर काम कर रहा था, मैंने कहा, ठीक है, मुझे आपसे बस यह पूछना है कि क्या आपने कभी कोई नाटकीय चमत्कार देखा है? और उसने कहा, ओह हाँ, वर्षों पहले हम में से कुछ लोग एक गांव में धर्म प्रचार कर रहे थे और वे हमारे पास एक अंधी बुजुर्ग महिला को लेकर आए जिसकी ओझाओं ने मदद नहीं की थी। उसे उपलब्ध किसी भी चिकित्सा सहायता से मदद नहीं मिली थी। तो उन्होंने कहा, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? और उन्होंने कहा, ठीक है, हमने एक दूसरे की ओर देखा। हमने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, परंतु हमने कहा कि हम इसलिए आए हैं कि प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए देखें कि वह क्या कर सकता है। और वे प्रार्थना करने लगे। 2 मिनट में ही वह ठीक हो गई। वह चिल्लाने लगी, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, और चारों ओर नाचने लगी। वह जीवन भर दृष्टिहीन रही। अब कभी कभी यह अप्रत्याशित होता है, आप जानते हैं। कई वर्ष पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पवित्र आत्मा चाहता था कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह इस विशेष दालान में था। इसलिए मैं अपने परिसर में इस विशेष दालान के नीचे गया और दालान में केवल एक ही व्यक्ति था, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा, क्या तुम्हें किसी चीज के लिए प्रार्थना की जरूरत है? वह ऐसा था, ठीक है, तुम्हें पता है मेरी पीठ में दर्द है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो आप इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और अचानक मुझे एहसास हुआ, आप जानते हैं क्या, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु चाहते थे कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मैं प्रार्थना कैसे करूं? और इसलिए मैं बस प्रार्थना करना शुरू कर रहा था और अचानक वह आदमी चिल्लाने लगता है, अरे मेरी पीठ बेहतर है, मेरी पीठ बेहतर है। और मुझे लगता है, रुको, हे भगवान, मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। वैसे भी भगवान जानता है, वही तो काम करता है, यह हम नहीं हैं। तो यह मेरे छात्रों में से एक है जिसने उस सेमिनरी में मास्टर डिग्री और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री की डिग्री हासिल की जहां मैं पढ़ाता था, पॉल मैककॉकी, कैमरूनियन बैप्टिस्ट। मेरे एक और छात्र का कैमरून में दौरा हुआ और उसने ही मुझे बताया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी जो अंधा था और उसकी अंधी आंखें खुल गईं। और मैंने पॉल से इस बारे में बात की और उसने कहा, ओह हाँ, यह सच है। लेकिन पॉल के पास बहुत सारी कहानियां थीं, उनमें से एक वास्तव में वह नहीं थी जिसे उसने प्रदर्शित किया था। इथियोपिया के गेब्रू वोल्दू ने मुझे इथियोपिया के फुल गॉस्पेल चर्च से कई विवरण दिए। ग्रेग स्पेंसर, इसके पास चिकित्सीय दस्तावेज हैं। ग्रेग स्पेंसर मैक्यूलर डिजनरेशन के कारण अपनी दृष्टि खो रहे थे। इस समय वह कानूनी रूप से अंधा था। उन्हें कानूनी रूप से अंधे के रूप में प्रमाणित किया गया था और इस विकलांगता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। वह मन की चिकित्सा के लिए एकांतवास में गए। ऐसा नहीं था, वह अपनी दृष्टि के ठीक होने के लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा था, वह अपने मन के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वह देख सकता है और वह बाहर चला गया और वह सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था और मेडिकल रिपोर्टों से उनकी दृश्य तीक्ष्णता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह बना हुआ है। अब इसमें एक समस्या थी और वह यह कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन, जो उसे विकलांगता के लिए पैसा दे रहा था, ने कहा, एक मिनट रुकें, यह मैक्यूलर डिजनरेशन के कारण था, आप ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता। और इसलिए उन्होंने लगभग एक वर्ष तक इसकी जांच की और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आपकी दृश्य तीक्ष्णता में उल्लेखनीय वापसी हुई है, अब आप देख सकते हैं, लेकिन अब आपको विकलांगता नहीं मिलेगी, तो तुम्हें नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। खातों का अगला समूह जो मैं आपको देना चाहता हूं वह मृतकों में से जीवित होने से संबंधित है। अब आम तौर पर हम लोगों के बारे में केवल मनोदैहिक रूप से मृत होने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो यह उन लोगों के लिए मददगार है जो कहते हैं कि ये चीजें सिर्फ मनोदैहिक हैं। अब कभी कभी लोग कह सकते हैं, ठीक है, आप जानते हैं, मौत का गलत निदान किया गया होगा, शायद उन्होंने बस यही सोचा था कि वह व्यक्ति मर गया है और वह व्यक्ति वास्तव में पूरी तरह से मरा नहीं था। तो इस बिंदु पर मैं जो नोट करना चाहता हूं वह यह है कि मेरे अपने सर्कल में हमारे पास कम से कम 10 प्रत्यक्षदर्शी खाते हैं, वास्तव में 10 से अधिक प्रत्यक्षदर्शी खाते हैं। मेरे सर्कल और मेरी पत्नी के सर्कल से मृतकों में से जीवित होने वाले लोगों के, तो आप जानते हैं, यदि ये सभी गलत निदान वाली मौतें थीं, तो हम बहुत अधिक संख्या में लोगों को समय से पहले दफना रहे हैं। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि इसके बजाय जो हो रहा है वह यह है कि भगवान बस कई स्थानों पर चमत्कार कर रहे हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कभी गलत निदान नहीं किया गया है, कई बार यह है, लेकिन आप जानते हैं, अगर आप सोचने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम बहुत से लोगों को समय से पहले दफन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने निकटतम दायरे में कितने लोगों की उम्मीद करेंगे? और यदि आप कहते हैं कि शायद 10 में से एक मौका, तो आप अपने निकटतम दायरे में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो मुझे लगता है कि बहुत उदार है। यह संभवतः उससे कहीं अधिक संख्या में एक मौका होगा। लेकिन अगर मैं अपने निकटतम घेरे में 10 जानता हूं, तो वह 10 से 10वीं घात होगी। यह 10 अरब में एक मौके के समान है। और मैं ही चमत्कारों पर किताब लिख रहा हूं। मेरा कहना यह है कि यह संभवतः एक संयोग नहीं है, बल्कि यह है कि जिन मंडलियों में वे प्रार्थना करते हैं और जहां उन्हें ऐसा करने के लिए भगवान द्वारा नेतृत्व किया जाता है, हमारे पास अक्सर कई चमत्कार होते हैं। ऐतिहासिक रूप से हमारे पास कई खाते हैं। उनमें से एक वेस्ले की पत्रिका से है, उदाहरण के लिए 25 दिसंबर 1742। उन्होंने श्री मायरिक के लिए प्रार्थना की जो 10 दिन पहले बीमार पड़ गए थे, और जहां तक वे बता सकते थे वह मर चुका था, और उनके लिए प्रार्थना करने के बाद श्री मायरिक पुनर्जीवित हो गए और फिर बेहतर हो गए। हमारे पास डॉक्टरों के भी कई खाते हैं। मुझे एक फिलीपींस में डॉक्टर मर्विन ओस्कोबानो से और एक वेस्ट पाम बीच में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चाउंसी क्रैंडल से मिला। 2006 में जेफ मार्किन नाम का एक व्यक्ति था जो सीने में दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुआ था। जब वह खुद की जांच कर रहा था, तब वह गिर गया और उसे पुनर्जीवित करने के लिए आपातकालीन कक्ष में 40 मिनट तक प्रयास किया गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन करने के बावजूद वे उसे पुनर्जीवित करने में असमर्थ थे। इस समय उन्होंने डॉक्टर क्रैंडल को बुलाया जो अस्पताल में चक्कर लगा रहे थे। वह हृदय रोग विशेषज्ञ थे, इसलिए वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे। उन्होंने उसे दिखाया कि उन्होंने क्या किया है और वे सभी सहमत हुए, ठीक है, हम और कुछ नहीं कर सकते। हमने वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। इस समय उस व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए वह चक्कर लगाने के लिए वापस जा रहा था, लेकिन वह एक ईसाई था। उसने महसूस किया कि पवित्र आत्मा ने उसे वापस जाने और इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। उसने उस आदमी के सिर पर हाथ रखा और कहा, पिता, यदि आप चाहते हैं कि इस आदमी को आपको जानने का एक और मौका मिले, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मृतकों में से जीवित कर देंगे। जाहिर है आमतौर पर ऐसा नहीं होता। नर्स डॉक्टर क्रैंडल को ऐसे घूर रही थी जैसे, डॉक्टर क्रैंडल, आप पागल हैं। लेकिन वह अपने सहकर्मी की ओर मुड़ा जो अभी अभी उसके साथ आया था और कहा, एक बार और उसे चप्पू से झटका दो। और सहकर्मी ने कहा, हम सभी सहमत थे कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप यही चाहते हैं। उसे एक बार फिर चप्पू से झटका दिया। तुरंत उसकी दिल की धड़कन सामान्य हो गई। अब केवल 1 या 2 मिनट के लिए फ्लैट लाइन में रहने के बाद आप आमतौर पर तुरंत सामान्य दिल की धड़कन की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उसकी दिल की धड़कन तुरंत सामान्य हो गई थी। खैर, बिना ऑक्सीजन के 6 मिनट के बाद मस्तिष्क को अपूरणीय क्षति शुरू हो गई, और इसलिए नर्स चिल्लाने लगती है, डॉक्टर क्रैंडल, डॉक्टर क्रैंडल, आपने क्या किया है? यह आदमी स्पष्टतः मर चुका था। वह आदमी सफेद था, लेकिन उसकी उंगलियां सियानोसिस के कारण पहले ही काली हो चुकी थीं। वह स्पष्ट रूप से मर चुका था, लेकिन अब वह फिर से जीवित था। और यह शनिवार था। सोमवार को जब वह अस्पताल वापस गए, तो डॉक्टर क्रैंडल उनसे मिलने गए और वह व्यक्ति उनसे बात कर रहा था। कोई मस्तिष्क क्षति नहीं हुई और उस व्यक्ति को भगवान को जानने का दूसरा मौका मिला। और यह डॉक्टर क्रैंडल उस व्यक्ति के बपतिस्मा में भाग ले रहे हैं क्योंकि उसने मसीह को स्वीकार किया था। ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर सीन जॉर्ज, वह स्वयं एक मेडिकल डॉक्टर हैं। जब वे उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश में 55 मिनट बिताए। उनके पास सभी मेडिकल दस्तावेज हैं। उन 55 मिनटों के बाद पहले से ही तीव्र किडनी विफलता के कारण उसके सभी अंग काम करना बंद कर रहे थे। लेकिन उनके सहकर्मियों ने बहुत दुखी होकर उनकी पत्नी से कहा, तुम्हें अभी उन्हें अलविदा कहने की जरूरत है और फिर हम उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली से हटा देंगे। और वे अंदर गए, वह अंदर गई और उसने बस इतना कहा, हे भगवान, कृपया उसे मुझे वापस दे दो। फिर ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन अचानक उसका दिल काम करने लगा। और उनके एक सहकर्मी ने कहा कि यह संभवतः सबसे बुरी बात हो सकती है, क्योंकि स्पष्ट रूप से अब उनका मस्तिष्क इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि किसी समय उनकी पत्नी को उन्हें जीवन समर्थन से हटाने का विकल्प चुनना होगा। लेकिन वह तुरंत ठीक नहीं हुआ, लेकिन वह ठीक हो गया और 3 महीने के भीतर वह डॉक्टर के रूप में काम पर वापस चले गए। उनके मस्तिष्क को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। एक अन्य उदाहरण, यह मेरे पिछले सेमिनरी में न्यू टेस्टामेंट में मेरे सहकर्मी डॉक्टर डेबोरा वॉटसन का है, जिनके पास PhD है। यूके से उसने मुझे बताया कि जब वह छोटी थी तो उसके परिवार में क्या हुआ था। उसके पिता एक पादरी थे और उसकी छोटी बहन एक बासिनेट में थी जो एक ऊंचे स्थान पर रखी हुई थी। किसी तरह वह गिर गई और बहन बाहर गिर गई और उसके सिर का पिछला हिस्सा बहुत नीचे कंक्रीट के फर्श पर जा गिरा। वह कोई आवाज नहीं कर रही थी, वह शांत थी, वह हिल नहीं रही थी। वे उसके पास दौड़े, मैंने डेबोरा के पिता से इसकी पुष्टि की और जब उन्होंने उसे उठाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा उनके हाथ के नीचे कुचल गया हो और कुरकुरा रहा हो। वे उसे डॉक्टर के पास ले गए प्रार्थना करते हुए और डॉक्टर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर लोगों को बुलाया, पिता को बुलाया और कहा, आपने कहां कहां कि यह हुआ? आपने क्या कहा जब आपने उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से को महसूस किया तो आपको क्या महसूस हुआ? उसकी खोपड़ी पूरी तरह से बन गई थी, वह पूरी तरह ठीक हो गई थी और तब से उसे कोई समस्या नहीं हुई। हमारे पास भारत से इस बारे में काफी बड़ी संख्या में दावे हैं। वास्तव में पूर्वोत्तर भारत में निशी आदिवासी लोगों के बीच ईसा मसीह में विश्वास के लिए लोगों के आंदोलन की शुरुआत का दस्तावेजीकरण करने वाले एक शोध प्रबंध में वहां एक सरकारी अधिकारी था जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। खैर, इस समय उसका बेटा मर रहा था और उसने सब कुछ करने की कोशिश की। उसने अलग अलग देवताओं को बलिदान दिया था, जो भी चिकित्सा सहायता उपलब्ध थी उसने कोशिश की थी और अंत में फार्मासिस्ट ने कहा, ठीक है, आप ईसाई भगवान यीशु से प्रार्थना करने का प्रयास क्यों नहीं करते? इसमें कहा गया है कि उसने लाजर्स नाम के किसी व्यक्ति को मृतकों में से जीवित किया। इसलिए वह वापस चला गया, जहां तक वह बता सका उसका बच्चा मर चुका था। फिर यह ऐसा कुछ नहीं है जो हमेशा होता है, लेकिन उन्होंने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरे बच्चे को मृतकों में से उठाएंगे तो मैं आपका अनुयायी बन जाऊंगा। यीशु जिसने लाजर को पुनर्जीवित किया, यदि आपने उसे मृतकों में से उठाया तो उसका बच्चा फिर से जीवित हो गया, वह ईसाई बन गया। यह शुरुआत थी एक जन आंदोलन की चिंगारी, जिसमें निशी आदिवासी लोगों के बीच बहुत से लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे। दुनिया भर में वैश्विक पेंटेकोस्टलवाद का अध्ययन करने वाले 2 पश्चिमी समाजशास्त्री स्वयं पेंटेकोस्टल नहीं थे, वे सिर्फ पेंटेकोस्टल का अध्ययन कर रहे थे, हालांकि वे ईसाई थे। उन्होंने अलग अलग जगहों पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। एक जगह उन्होंने गांव के एक हिंदू बुजुर्ग का साक्षात्कार लिया, जिसने इसकी गवाही भी दी। एक पादरी द्वारा इस महिला के लिए प्रार्थना करने के बाद वह मृत घोषित होने के बाद फिर से जीवित हो गई। एक अन्य स्थान पर एक भारतीय पादरी था जिसने एक मृत लड़की के लिए प्रार्थना की। उसकी नाक से कीड़े निकल रहे थे। जाहिर है वह बिल्कुल मर चुकी थी, लेकिन वह होश में लौट आई। उसने अपना अनुभव, मृत्यु के बाद के जीवन का अपना अनुभव साझा किया। स्थानीय समाचार पत्रों ने इस कहानी को प्रकाशित किया। दूसरा उदाहरण यह मुंबई से है। वहां के पादरी ने यह बात मुझसे साझा की। श्रद्धालु एक रिट्रीट सेंटर में थे और रिट्रीट सेंटर विशेष रूप से एक ईसाई रिट्रीट सेंटर नहीं था, यह सभी के लिए था। विश्वासियों को विक्रम नाम का एक हिंदू लड़का एक तालाब के तल पर पड़ा हुआ मिला और उन्होंने उसे बाहर निकाला और उन्होंने प्रार्थना की और कुछ नहीं हो रहा था। उनमें से दो ने चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए उसे उतार दिया। समूह की एक नर्स और एक मध्यस्थ उसे स्थानीय अस्पताल ले गए और डॉक्टर, पहले डॉक्टर ने कहा, देखो वह मर गया है, बस उसे ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे डॉक्टर ने वास्तव में विक्रम को पुनर्जीवित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। खैर, डेढ़ घंटे बाद वे शव लेकर समूह में वापस आ रहे थे। जब विक्रम जीवित हो गए तो समूह पीछे रह गया और प्रार्थना करता रहा। और विक्रम की ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो विक्रम के जीवित होने के बाद ली गई थीं। अब कभी कभी ठंडे पानी में डूबने की स्थिति में आप सामान्य 6 मिनट के बाद किसी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन यह विशेष रूप से ठंडा पानी नहीं था, यह बिल्कुल भी बर्फीला नहीं था। और साथ ही आम तौर पर किसी व्यक्ति को ठीक होने में लंबा समय लगता है, भले ही वह दोबारा सांस लेना शुरू कर दे। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वह खेलने के लिए तैयार हो जाएगा। उसने कहा कि उसने यीशु का नाम सुना और फिर बचा लिया गया। उनके हिंदू माता पिता ने नोट किया कि उन्होंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। और ये विक्रम और उनके परिवार की ईसाइयों की पूजा सेवा में शामिल होने की तस्वीरें हैं। अब एक बहन है जिसका मैंने फिलीपींस में साक्षात्कार लिया। 1983 में लीवर कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। चमत्कार अद्भुत हैं, लेकिन हमें अभी भी दुनिया में चिकित्सा स्वास्थ्य उपचारों को और अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वैसे भी 1983 में लीवर कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। वह इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी। मुझे लगता है कि उसने मुझे बताया था कि वह पूरे समय एक एस्पिरिन लेती थी। यही एकमात्र चीज थी जो उसके पास थी। 1984 में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई और 1 घंटे और 45 मिनट बाद एक बैप्टिस्ट पादरी था जो उसके दोस्त के साथ मुर्दाघर में था और पादरी ने प्रार्थना की। और मैंने कहा, पादरी ने क्या प्रार्थना की? और उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं मर चुकी थी। वैसे भी, लेकिन पादरी के प्रार्थना करने के बाद उन्होंने देखा कि चादर के नीचे कुछ हिल रहा था। उन्हें लगा कि शायद वहां कोई चूहा घुस आया है। उन्होंने इसे वापस खींच लिया। वह जीवित थी। उनका पेट, जो लिवर कैंसर के कारण सूज गया था, पूरी तरह से सामान्य था। आखिरकार वह गई और उसे एक डॉक्टर मिला जिसने उसे बताया कि वह लीवर कैंसर से मर रही है। और इसके फलस्वरूप डॉक्टर का धर्म परिवर्तन हो गया। यह इंडोनेशिया से एक खाता है। यह मेरे पड़ोसी का था। मिरेकल्स की अधिकांश पुस्तकें लिखने के बाद जब मैं असबरी सेमिनरी में चला गया तो मेरा पड़ोसी इंडोनेशिया से था और उसने मेरे साथ इंडोनेशिया के अपने मित्र के बारे में एक गवाही साझा की। और ये अगली कुछ तस्वीरें मैं उन्हें दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि हमारे पास यह मानने का अच्छा कारण क्यों है कि वह व्यक्ति मर गया था। लेकिन अगर आपको खून देखकर घबराहट होती है तो इन अगली कुछ तस्वीरों को न देखें। लेकिन उसका दोस्त मारा गया। दरअसल ये इससे भी ज्यादा खूनी मंजर था। यह शरीर को हिलाने के बाद की बात है। लेकिन इस तरह से मारे जाने के बाद, और आप उसकी गर्दन देख सकते हैं, उसका सिर पूरी तरह से कटा नहीं था, लेकिन वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्हें स्वर्ग का यह अनुभव हुआ और फिर उन्हें उनके शरीर में वापस भेज दिया गया। खैर, यहाँ वे शव को अस्पताल ले जा रहे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, वे शव का बहुत सावधानी से इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वह अभी भी जीवित है। लेकिन वह अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टरों को यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह अभी भी जीवित है, इसलिए उन्होंने उसकी गर्दन वापस सिल दी। उसे उस हिस्से के लिए चिकित्सा सहायता की जरूरत थी, लेकिन उस हिस्से के लिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे, जो उसे वापस जीवन में ला रहा था, भगवान ने वह किया। और उसके पास अभी भी दिखाने के लिए दाग है, लेकिन वह आज मंत्रालय में है। ये एक और विद्वान हैं। यह नाइजीरिया के प्रोफेसर अयो एडेबुया हैं, जो मूल रूप से अब संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ा रहे हैं। मैं अपने विद्वान सहयोगियों को यह बताने के उद्देश्य से एक विद्वान बैठक में इनमें से कुछ विवरण साझा कर रहा था। आप जानते हैं, कभी कभी जब हम पश्चिम में सुसमाचार पढ़ते हैं, तो हम इन चमत्कारिक कहानियों को एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में लोग इनके प्रति अधिक खुले हैं, और शायद हम इससे सीख सकते हैं कि वे इन्हें कैसे पढ़ते हैं। iobiblicallylearning.org पर दो कुरिंथियों को पढ़ाता है, और जब मैंने वह समाप्त किया तो डॉक्टर अडेबुया दर्शकों के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने कहा, वास्तव में मेरे पास इसका विवरण है। मेरे अपने जीवन में उनका अपना बेटा मर चुका था, उनका बेटा मृत पैदा हुआ था, और 30 मिनट के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की और उनका बेटा जीवित हो गया और उसके मस्तिष्क को कोई क्षति नहीं हुई। उन्होंने अब लंदन विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी कर ली है। एक अन्य मित्र लियो बाबा। लियो और मैंने नाइजीरिया में एक साथ काम किया था, और इसलिए लियो के पास मेरे लिए कई कहानियां थीं। लेकिन जब तक मैं किताब पर काम नहीं कर रहा था, तब तक मैंने वास्तव में उनसे चमत्कारों के बारे में नहीं पूछा था। तो आप जानते हैं, जब मैं किताब पर काम कर रहा था, मैंने कहा, क्या आपके पास चमत्कारों का कोई विवरण है? उन्होंने कहा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ ही। मुझे अपने वृत्तांत के साथ पन्ने दिए, और उनमें से एक खाता था जहां वह इस एक गांव में शोध कर रहे थे। वह एक शोधकर्ता है, वह अब डॉक्टरेट कर रहा है। वह इस एक गांव में शोध कर रहा था जब उसके मेजबान के पड़ोसी आए और उसे अपना बच्चा सौंप दिया, जिसे वे मरा हुआ मानते थे, और कहा, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कुछ होगा। प्रार्थना करते हुए कुछ घंटों के लिए बच्चे को एक तरफ ले गए और उन्होंने बच्चे को जीवित उन्हें वापस सौंप दिया। नाइजीरिया में वही मंत्रालय जहां मैं लियो से मिला था, तिमोथी ओलानेडे के साथ भी यही मंत्रालय था। तिमोथियस अब एक अलग मंत्रालय में चला गया है। वह एक एंग्लिकन पादरी है, लेकिन तिमोथी उन दो लोगों में से एक था जो एक दुर्घटना में मारा गया था। पुलिस को कोई नाड़ी या दिल की धड़कन नहीं मिली, उस पर खून जम गया। दुर्घटना के 8 घंटे बाद लगभग 3 बजे उन्होंने उसे मुर्दाघर में घूमते हुए पाया। डॉक्टरों का मानना था कि इससे मस्तिष्क को गंभीर क्षति होगी, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन 3 सप्ताह के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब उनके पास दिखाने के लिए एक निशान के अलावा कुछ भी नहीं है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मैंने वह निशान देखा था, लेकिन मैंने उससे इसके बारे में कभी नहीं पूछा था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। उन पर काम करने वाले सर्जन, जो वहाँ मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर भी थे, ने कहा, यह एक चमत्कार है कि आप जीवित हैं और आपके मस्तिष्क को कोई क्षति नहीं हुई है। ये दो चमत्कार हैं। और मेडिकल छात्र उनसे पूछ रहे थे, अच्छा, इसके बारे में क्या? इस बारे में क्या? उन्होंने कहा, इस मामले में इसे भूल जाइए। मैंने आपको पहले ही बताया था। यह एक चमत्कार है। वह अब नाइजीरियाई मिशनों में एक बहुत सम्मानित नेता हैं और एक एंग्लिकन पादरी हैं। मैं आपको कई अन्य खाते दे सकता हूँ। ये उन लोगों से हैं जिन्हें मैं अपनी पत्नी के माध्यम से पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में और भी बेहतर जानता हूँ। पादरी आंद्रे ममाडजे जो बैठे हैं, ठीक है, चाहे वह बाएं या दाएं हो, यह इस पर निर्भर करता है कि आप मेरे पीछे हैं या मेरे सामने। लेकिन फिर भी पादरी आंद्रे ममाडजे ने मुझे एक विवरण दिया। वह मेरे भाई का पादरी है, मेरे बहनोई में से एक सुंगा वाला व्यक्ति। मेरे बहनोई और कैमरून में बड़े चर्च के पादरी दोनों ने पादरी ममाडजे का उल्लेख किया था। वह कोरिया से है और वह वहां एक सेमिनरी का डीन भी है, जिसने कहा, इस आदमी के पास बहुत सारे विश्वसनीय खाते हैं। खैर, उसने मुझे ओलिव नाम की एक लड़की का विवरण दिया। ओलिव लगभग 6 साल की थी और सुबह उसकी मृत्यु हो गई। वे उसे अस्पताल ले आए। अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। वे उसे दूसरे अस्पताल ले गए। दूसरे अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वे घबरा गए। वे उसे चर्च में ले आए और पादरी के कार्यालय में मेज पर लिटा दिया और कहा, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? और सहायक पादरी ने कहा, यह पागलपन है। मर गई। मेरा मतलब है, यह भयानक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आपको उसे मुर्दाघर ले जाना होगा या कम से कम उसे वापस अस्पताल ले जाना होगा। यह चर्च है। और पादरी ममाडजे ने इस मामले में, उन्होंने कहा, मैं उनके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप आगे बढ़े और बाहर जाकर सेवा शुरू करें। वे प्रार्थना सभा शुरू करने वाले थे। अब शाम के लगभग 6 बज रहे थे, इसलिए वह कई घंटों तक मर चुकी थी, शायद 7 या 8 घंटे। इसलिए उन्होंने उनके साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रार्थना सेवा के दौरान सहायक पादरी वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए जब पादरी आंद्रेई ममाडजे माता पिता और ओलिव के साथ हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। 5 साल बाद जब मैंने उसका साक्षात्कार लिया तो ओलिव अभी भी ठीक था। ये उस प्रकार के कार्य हैं जिन्हें परमेश्वर करता है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम अपनी ताकत से घटित कर सकते हैं। हमारे पास कांगो ब्रेजाविल से भी कई उदाहरण हैं, जहां से मेरे बहनोई और मेरी पत्नी मूल रूप से रहते हैं। 3 सप्ताह में एग्लीज के ठीक भीतर इवेंजेलिक डू कांगो, कांगो का इवेंजेलिकल चर्च, यह कांगो में मुख्य प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है। मुझे इस संप्रदाय के लोगों से 7 प्रत्यक्षदर्शी विवरण मिले, जो लोग मेरे परिवार को बहुत करीब से जानते हैं, जिनमें संप्रदाय के अध्यक्ष भी शामिल हैं। उन्होंने हमें इसके बारे में एक जानकारी दी। उसका अपना बेटा प्रार्थना के माध्यम से मृतकों में से जीवित हो उठा। मैं संप्रदायों को निर्दिष्ट कर रहा हूं ताकि आप देख सकें कि यह कई अलग अलग समूहों के साथ होता है। यदि मैंने वहां पेंटेकोस्टल का साक्षात्कार लिया होता, यदि मैंने वहां कैथोलिकों का साक्षात्कार लिया होता, तो मेरे पास अन्य कहानियां भी होती। ये वे कहानियां हैं जो मुझे इस संप्रदाय में मेरी पत्नी के मित्रों के एक छोटे से समूह से मिली। जीन माबियाला ने हमें 3 विवरण दिए जहां वह मौजूद थी और किसी के लिए प्रार्थना की और वे जीवित हो गए। मुझे लगता है कि यह एक संयोग से भी अधिक होगा। इनमें से एक खाता एक ऐसे बच्चे का था जो मृत पैदा हुआ था। जीन माबियाला वह इवेंजेलिकल चर्च में एक उपयाजक हैं, लेकिन उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक दाई के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया है। युद्ध के दौरान उसे कभी कभी बच्चों को जन्म देना पड़ता था। खैर, यह बच्चा गर्दन के चारों ओर लिपटी गर्भनाल के साथ मृत पैदा हुआ था। बच्चे का रंग सफेद हो गया था, साफ तौर पर मृत। मामा जीन ने सोचा कि बच्चा शायद रात के दौरान मां के गर्भ में मर गया। पिता बच्चे के लिए ताबूत बनाने के लिए बाहर गए। इस बीच मामा जीन, जैसा कि हम उन्हें बुलाते हैं, और मां और वहां मौजूद किसी अन्य व्यक्ति ने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की। जब पिता ताबूत बनाकर वापस आए तो बच्चा जीवित था। उन्होंने बच्चे का नाम मिलग्रास रखा, हजार गुना अनुग्रह। वह अब स्कूल में है। ब्रेजाविल में मेरे बहनोई के चर्च से एक और उपयाजक। ये तो अलग साला है। यह अब भी है, वह उस जीजा का ससुर है, इसलिए मुझे लगता है कि यह उसे मेरा रिश्तेदार साला बनाता है। लेकिन वैसे भी उन्हें पापा अल्बर्ट बेसवेस कहा जाता है। वह वास्तव में कांगो के उत्तर में एटुम्बी में एक स्कूल निरीक्षक थे, और उन्होंने कहा कि ये चीजें कहीं और नहीं हुई, बल्कि ये एटुम्बी में हुई। यह कुछ ऐसा था जो भगवान उससे करवाना चाहते थे। उसने देखा कि उसके घर के आसपास भीड़ जमा है, और वहां भीड़ इस मृत लड़की के आसपास जमा थी जिसकी मौत करीब 8 घंटे पहले हुई थी। वे उसे अलग अलग ओझाओं के पास ले गए, जिनके पास अलग अलग पारंपरिक चिकित्सक थे, जिन्होंने न केवल दवा का उपयोग किया था, जो समझ में आता है, बल्कि उन्होंने विभिन्न देवताओं या आत्माओं को बलि भी दी थी। उन्होंने उसके मुंह, उसकी आंखों, उसकी नाक और उसके कानों में खून लगा दिया था, और किसी भी चीज ने उसे पुनर्जीवित करने में मदद नहीं की, और इसलिए वे उसे ईसाई के पास ले आए। और उसने कहा, तूने पहले इन सब देवताओं से प्रार्थना क्यों की? तुम पहले सच्चे और जीवते परमेश्वर के पास क्यों नहीं आए? परंतु इसलिए तुम जान लो कि यीशु मसीह का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। वह बच्ची को करीब आधे घंटे के लिए एक तरफ ले गया और उसे जीवित माता पिता और एकत्रित भीड़ को सौंप दिया। खैर, इसका गांव में काफी प्रभाव पड़ा। इसलिए अगली बार जब कोई बच्चा मर गया तो वे पापा बेसवेस्वे की तलाश में निकल पड़े। लेकिन पापा बेसवेस्वे कहीं और स्कूल निरीक्षण के सिलसिले में शहर से बाहर थे, इसलिए उन्हें उसकी पत्नी मिल गई और वहां आई और उसने प्रार्थना की और यह बच्चा जीवित हो गया। अब जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने कहा, हे भगवान, मैंने अभी क्या किया? लेकिन भगवान ने उसे उस समय ऐसा करने का विश्वास दिया जब उसे इसकी आवश्यकता थी। फिर मैंने पूछा कि क्या ऐसा कहीं और हुआ है, और उसने कहा, उन दोनों ने कहा नहीं। कुछ अन्य मामलों में मैंने लियो बाबा से पूछा कि क्या उनके साथ पहले कभी ऐसा हुआ था। लियो बाबा ने कहा, आप जानते हैं, केवल दूसरी बार मैंने प्रार्थना की थी और बेसवेस्वे ने किसी और मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की थी। केवल दूसरी बार जब लियो ने किसी मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना की थी तो वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यह इस एक गांव में सुसमाचार के लिए था तो यह हुआ। डॉक्टर क्रैंडल के साथ उनका पहले भी एक और मामला था। उनका अपना बेटा ल्यूकेमिया से मर गया था और उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उनका बेटा वापस जीवित नहीं हुआ। लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह विश्वास नहीं खोएगा कि ईश्वर अभी भी ईश्वर है और ईश्वर अभी भी भरोसेमंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए उसका विश्वास अगली बार तैयार हो गया जब भगवान ने वास्तव में उसे विशेष रूप से जेफ मार्किन के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। मैं अगले खंड में कुछ और कहानियां बताने जा रहा हूं, लेकिन उम्मीद है इससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं कि चमत्कार होते हैं। यह मैथ्यू की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र संख्या 2 विश्वसनीयता भाग 2 और चमत्कार भाग 1 है।